भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के गीतामृत कार्यक्रम में। पिछले बुधवार हमने जो श्लोक लिया वो इस तीसरे अध्याय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात् स्वनुष्ठितात्, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मात् भयावह। तो स्वधर्म और परधर्म की व्याख्या करते हुए भगवान ने कहा कि यदि कोई अपना स्वधर्म दोषपूर्ण तरीके से भी करता है, विगुणता से, जिसके अंदर दोष हैं, तो भी वो उसके लिए श्रेयस्कर है। और इसके ठीक विपरीत जो परधर्म को निपुणता से भी करे तो वो भयावह सिद्ध हो सकता है। और स्वधर्म एवं परधर्म की एक विशेष व्याख्या हमने भगवद गीता के इस श्लोक को लेते हुए की, दैवी हेश गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंतिते। सातवें अध्याय का यह श्लोक जिसमें भगवान बता रहे हैं पहली दो पंक्तियों में, जब जीव माया के अधीन रहता है तो उसकी भयावह स्थिति क्या रहती है, अर्थात वो परधर्म है। जीव का परधर्म है माया के अधीन रहना, और जीव का स्वधर्म है भगवान श्री कृष्ण की शरणागति। तो एक ही श्लोक में भगवान जीव के परधर्म और जीव के स्वधर्म की व्याख्या कर रहे हैं। ये श्लोक श्रेयान स्वधर्मो विगुणः ये इतना महत्वपूर्ण है कि भगवान ने इसी प्रकार का श्लोक 18वें अध्याय में भी कहा। और जहां भगवान स्वधर्म की व्याख्या कर रहे वहां पर फिर से भगवान ने यही श्लोक दोहराया अर्जुन को। तो अब अर्जुन ने स्वधर्म और परधर्म के विषय में सुनने के पश्चात भगवान से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न अर्जुन ने विशेष रूप से हम सब भौतिक संसार के जो बद्ध जीव हैं उनकी ओर से पूछा है। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। तो अर्जुन यहां प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान से कि हे वार्ष्णेय, भगवान कृष्ण को वार्ष्णेय इस नाम से पुकार रहे हैं अर्जुन कि हे वृष्णी वंशी, हे वार्ष्णेय मुझे बताइए, अथ केन प्रयुक्तोयम्, कि वो कौन सी शक्ति है जिसके कारण पापम चरति पुरुषः, पुरुष इस संसार में पाप करने के लिए प्रेरित हो जाता है, कौन सी शक्ति के वजह से। और उसके आगे अर्जुन बता रहे हैं, पहली दो पंक्ति में अर्जुन ने प्रश्न पूछा और फिर अगले दो पंक्ति में अर्जुन भगवान को बता रहे हैं कि वो किस प्रकार की शक्ति के द्वारा वो किस दशा में पाप करता है, अनिच्छन, बिना इच्छा के, बिना इच्छा के बलपूर्वक, बलाद इव नियोजिता, बिना इच्छा के बलपूर्वक ऐसी कौन सी शक्ति है जो उस जीव को, पुरुष को, मनुष्य को पाप करवाती है। ये अर्जुन एक यदि सार में आप जानना चाहें तो अर्जुन ये प्रश्न भी पूछ रहे हैं और अपनी ओर से बता भी रहे हैं। तो ये पूरा अनुवाद श्रील प्रभुपाद का इस प्रकार से है, अर्जुन ने कहा हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है, ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उन पाप कर्मों में लगाया जा रहा हो। अब देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण अर्जुन का प्रश्न, जो कि हम सब के अंदर हर क्षण ये प्रश्न उठता रहता है कि मुझे कुछ गलत नहीं करना है। कम से कम हम जो मंदिर में बैठे हैं तो इतनी तो संस्कृति है कि हम ये प्रश्न पूछते हैं कि मुझे नहीं करना है, फिर भी बलपूर्वक क्यों मैं प्रेरित होता हूं किसी पाप कर्म में लगने के लिए। और फिर वो कौन सी शक्ति है जो मुझे बलपूर्वक लगा रही है। तो आज के हमारे चर्चा के विषय इस प्रकार से रहेंगे, पिछले श्लोक से संबंध आज के श्लोक का, अर्जुन ने अतः शब्द इस्तेमाल किया है, तो अतः शब्द का अर्थ क्या है उसकी व्याख्या, अर्जुन और दुर्योधन के शिष्टाचार में अंतर। आज का श्लोक संबंधित है दुर्योधन से भी, वो हम जानेंगे कैसे। यंत्र एवं यंत्री का सिद्धांत, और हमारी चर्चा के विषय आज रहेंगे अर्जुन द्वारा पुरुष शब्द का उपयोग, अर्जुन द्वारा वार्ष्णेय नाम का उपयोग, मनुष्य जीवन का पाप एवं पुण्य से संबंध, बलाद इव नियोजित शब्दों की व्याख्या, और अंत में अर्जुन की मानव समाज के प्रति महान करुणा आज के इस प्रश्न के द्वारा। अर्जुन की महान करुणा किसके प्रति, हम सब के प्रति। तो सबसे पहले पिछले श्लोक से संबंध, तो पिछले श्लोक में जैसे हमने चर्चा की, स्वधर्म में जीना तथा मरना दोनों कल्याणकारी भगवान ने बताया कि यदि अपने स्वधर्म का पालन करते समय कोई किसी का निधन हो जाए, स्वधर्मे निधनम, यदि निधन हो जाए या वो अपना स्वधर्म करते हुए उसको निपुणता से न कर पाए, तो दोनों स्थितियों में कल्याणकारी है अपना स्वधर्म करना। तो ये पिछले श्लोक का सारांश। अब अर्जुन का प्रश्न आज के श्लोक में क्या, तो यदि स्वधर्म में जीना तथा मरना कल्याणकारी है तो कौन सी शक्ति है जो स्वधर्म छोड़ने पर विवश करती है? अर्जुन भी इतने सूक्ष्म और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहे हैं कि वो आसानी से भगवान श्री कृष्ण जो विश्लेषण कर रहे हैं उसको संक्षिप्त रूप में नहीं समझना चाहते, उसको विस्तार से समझना चाहते। अब देखिए, हमने भी पिछले हफ्ते ये श्लोक सुना था स्वधर्म के ऊपर, हमने प्रश्न पूछा, हमारे मन में प्रश्न आया था, तो क्यों एक दृष्टिकोण से अर्जुन हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण हैं? क्योंकि एक तो कलयुग के हम जीव हैं, भौतिक संसार के, सब कुछ मंद होते जा रहा है, हमारा आयु, बुद्धि, स्मृति, भाग्य, सब कुछ मंद होते जा रहा है। तो ये प्रश्न भी आजकल लोग नहीं पूछ पाते, बुद्धि भी इतनी हमारी विकसित नहीं है कि स्वधर्म और परधर्म, हमारा प्रश्न उल्टा हो सकता है कि क्या प्रॉब्लम है परधर्म, अच्छी से अगर कर रहा हूं तो क्या प्रॉब्लम है, भगवान को क्या प्रॉब्लम है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो, हा? तो हमारे ऐसे प्रश्न होते हैं कलयुग के। अर्जुन देखो कहां सूक्ष्म प्रश्न अर्जुन ने पूछा है कि वो कौन सी शक्ति है। हां, क्योंकि अपने स्वधर्म को बहुत लोग छोड़ते हैं। तो भगवान ने पिछले श्लोक में अपने स्वधर्म को छोड़ने की बात एक इनडायरेक्टली कही थी, है ना, कही थी इनडायरेक्टली कि जब अपने स्वधर्म को छोड़कर परधर्म करता है, तो इनडायरेक्टली भगवान कहे थे कि ऐसा देखने में आता है कि जीव अपने स्वधर्म को छोड़ता है। तो अर्जुन ने वहीं पकड़ लिया, हां यदि ऐसा देखने में आता है कि जीव अपने स्वधर्म को छोड़ता है, और ये जानते हुए कि परधर्म कितना भयावह है, और ये जानते हुए कि स्वधर्म में मरना भी कल्याणकारी है, इसके बावजूद क्यों छोड़ता है? तो अर्जुन इस प्रश्न के साथ वो एक कमेंट भी भगवान के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, एक टिप्पणी, क्या कि मुझे लगता है कि कोई ऐसी शक्ति है जो बिना इच्छा के बलपूर्वक उसको अपना स्वधर्म छुड़ाती है। तो ये कनेक्शन समझ में आ रहा है? तो अब हम पहले आज का श्लोक पूरा अच्छी से समझेंगे और फिर भगवान अगले श्लोक में अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर कैसे देना प्रारंभ करते हैं वो हम अगले बुधवार को देखेंगे। तो अब आज के श्लोक में सबसे पहला शब्द जो अर्जुन ने इस्तेमाल किया है वो है अथ। तो संस्कृत का ये शब्द, इसका अर्थ है किसी भी विषय को प्रारंभ करते समय संस्कृत भाषा में अथ शब्द का प्रयोग किया जाता है। अथ प्रथमोध्याय, अथ द्वितीयोध्याय, कुछ भी प्रारंभ करने से पहले अथ शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर आप यदि गौर करें तो अब एक दूसरा टॉपिक शुरू होने वाला है इस तीसरे अध्याय में, एक अलग टॉपिक शुरू होने वाला डिस्कशन का, और वो है हमारे अंदर के कुछ अनर्थ जिसके वजह से हमारे स्वधर्म में कोई बाहरी शक्ति के वजह से प्रॉब्लम नहीं आती, हमारे अंदर के ही शत्रुओं के वजह से प्रॉब्लम आती। काम क्रोध से शुरुआत उसकी होती। तो ये जो अब थर्ड चैप्टर में ये जो सेक्शन शुरू होने वाला है, तो इसकी शुरुआत जो हो रही है वो इस प्रश्न से हो रही है अर्जुन के, इस श्लोक से, आज के श्लोक से, 36वें श्लोक से एक अलग सेक्शन शुरू हो रहा है। तो आप थर्ड चैप्टर में ऐसे सेक्शन वाइज डिवाइड कर सकते हैं कि ये एक सेक्शन अभी शुरू होने वाला है अर्जुन के प्रश्न से। तो इसलिए जब एक नया सेक्शन, एक नया विषय, नया थीम शुरू होने वाला है, इसलिए अर्जुन ने कौन सा शब्द इस्तेमाल किया है? अथ। इससे समझ में आता है कि संस्कृत भाषा वो कितनी सुसंस्कृत है, कि उसमें यदि कुछ नई चीज की शुरुआत होती है तो उसका भी एक सलीका है, उसका भी एक तरीका है, एक सिविलाइज्ड वे है उसको पूछने का या उसकी शुरुआत करने का। ऐसा नहीं कि अचानक कुछ तो बोलो, कब क्या सुनाओ भी कुछ तो, गीता में आगे श्लोक भरने आपको, ऐसे नहीं भगवान को अर्जुन बोल रहे हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण अर्थ इस अथ शब्द का बताया गया है, किसी महत्वपूर्ण विषय को सुनाने से पहले सुनने वाले व्यक्ति को तैयार करना। जैसे यहां महाराष्ट्र में जब विवाह होता है तो तैयार करते हैं ना दूल्हे को, सावधान हाँ, सावधान बोलते हैं ना। हालांकि सब मंगल होने वाला है, शुभ होने वाला है, इसलिए पहले शुभ मंगल बोल देते हैं, लेकिन सावधान हो जाओ। सावधान इसलिए हो जाओ क्योंकि भौतिक संसार है भाई, कुछ भी हो सकता है। और वो बहुत ही मुझे अच्छा लगा, वो विवाह के समय वो बोलते हैं जोर से, एक बार बोलते हैं, दो तीन बार बोलते हैं, एक ही बार, तीन बार, अच्छा बहुत बार बोलते हैं। तो हमारे पुरोहित जी बाद में, पंडित जी कोई जिम्मेदारी नहीं लेते बाद में, मैंने सावधान किया था, एक बार नहीं बहुत दफा किया था, अब तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम संभालो। तो यहां पर यही समझ में आ रहा है कि अर्जुन एक बहुत गहन प्रश्न पूछने वाले हैं भगवान से, और इतना गहन ये प्रश्न है, इतना गंभीर, इतना महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, कि इस प्रश्न के उत्तर के आधार पर हम समझ सकते हैं कि हमारी जो भव सागर की यात्रा चल रही है वो इसके बलबूते पे चल रही है। इसलिए ये इतना महत्वपूर्ण विषय अर्जुन अब पूछने वाले हैं, इसलिए उन्होंने भगवान को सावधान किया। कि भाषा में भी आप देखिए कि रोजमर्रा हम जब वार्तालाप करते हैं तो हमें यदि कुछ महत्वपूर्ण बात कहनी होती है तो कुछ महत्वपूर्ण बात कहने से पहले हम उसका ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ शब्द इस्तेमाल करते हैं। हेलो हेलो, सुनो, ऐसे बोलते हैं पहले, मैं क्या बोलने वाला हूं सुनो, ऐसे बोलते हैं कि लुक व्हाट आई हैव टू से, पहले ये बोलते हैं फिर बाद में बताते हैं कि क्या बोलने वाले हैं। तो यहां पर अर्जुन केवल अथ शब्द बोल दिए तो भगवान समझ गए कि कुछ सीरियस बात अर्जुन बोलने वाले हैं, तो भगवान भी थोड़ा सावधान हो गए, चौकन्ना हो गए, ध्यान से सुनने अर्जुन के प्रश्न के लिए। तो इसलिए ये अथ शब्द का ये महत्व है। फिर अब हम देखते हैं कि अर्जुन और दुर्योधन में आज के श्लोक को लेकर शिष्टाचार में क्या अंतर? एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आज के श्लोक में अर्जुन ये बोल रहे हैं कि प्रश्न ये पूछा है उन्होंने अथकेन प्रयुक्तोयम, कि कौन सी वो शक्ति है जिससे प्रयुक्त होता है जीव ये पाप करने के लिए। तो मानो अर्जुन इनडायरेक्टली भगवान को ये पूछ रहे हैं, कहीं आप तो नहीं? इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं बोल रहे अर्जुन। तो क्योंकि सारे शक्तियों के स्रोत तो भगवान ही है, इसलिए अर्जुन ने बहुत ही सिविलाइज्ड तरीके से शिष्टाचार से एक इनडायरेक्ट प्रश्न पूछा है भगवान को। अब हम इसमें देखेंगे कि अर्जुन की जो जिज्ञासा वो नम्रता से ओतप्रोत थी। ये कह सकते हैं कि अर्जुन की जिज्ञासा को अर्जुन ने नम्रता की चाशनी में डुबो के पूछा, इसलिए भगवान को मीठी लगी वो जिज्ञासा। और एक घटना हुई दुर्योधन के साथ, ये गर्ग संहिता में इसका वर्णन है कि जब उग्रसेन महाराज ने अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़े को छोड़ा था, जो कि अलग अलग प्रांतों में जाकर राजाओं से सिग्नेचर लेकर आता कि हाँ ये अश्वमेध यज्ञ सफलतापूर्वक हो जाए, तो दुर्योधन ने उस घोड़े को कब्जे में कर लिया। और घोड़े को कब्जे में करने का उद्देश्य दुर्योधन का यह था कि इस घोड़े को अब छुड़ाने के लिए यादवगण आएंगे तो मैं उनको परास्त कर दूं, तो इतनी बड़ी जो सेना है यादवों की वो मेरे अधीन हो जाएगी। लेकिन उसे पता नहीं था कि यादव जो हैं, सबसे प्रमुख यादव भगवान कृष्ण, वो सबसे पहले आएंगे दुर्योधन को समझाने के लिए अलग तरीके से। तो जब भगवान आते हैं तो दुर्योधन भगवान को देखकर थोड़ा घबरा जाता है। तो एक वार्तालाप होता है भगवान कृष्ण और दुर्योधन के बीच। भगवान दुर्योधन को पूछते हैं कि दुर्योधन तुम क्यों इतने कुपेड़ी हो? कुपेड़ी समझते हैं आप, हर समय कुपेड़ करता रहता, उपद्रव। तुम्हारे दिमाग में इतना फितूर क्यों भरा हुआ? तुम शांति से अपने हस्तिनापुर में नहीं रह सकते? तो दुर्योधन देखिए उत्तर में भगवान को क्या कहता है, बहुत ईमानदारी से उत्तर देता है। ये एक जो दुर्योधन का उत्तर भगवान श्री कृष्ण को उसने दिया, पूरे ईमानदारी से दिया उसने, इसके लिए उसको शाबाशी देनी चाहिए। तो दुर्योधन का जवाब क्या था भगवान ने जब पूछा, तो दुर्योधन कहता है देखो मैं जानता हूं धर्म क्या है, अच्छी भली भांति मैं जानता हूं कि धर्म क्या है। मैं जानता हूं कि पांडव जो हैं वो धार्मिक हैं, वो धर्म का पालन कर रहे हैं। मैं धर्म क्या है अच्छी से जानता हूं, मैं पालन नहीं करूंगा। लेकिन और मैं अच्छी से जानता हूं कि अधर्म क्या है, और मैं उसको छोड़ूंगा नहीं कभी। अच्छा यहां तक तो बात ठीक थी, परंतु इसके आगे जो दुर्योधन ने कहा उससे समझ में आता है कि दुर्योधन का शिष्टाचार क्या था। दुर्योधन भगवान से कहता है कि देखो सब लोग आपको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, सबसे बड़ा कर्ता आप हैं, तो मैं ये कहूंगा। अब ये दुर्योधन ने एक फिलॉसफी वहां पर खड़ी की भगवान के सामने। वो कहता है कि मेरे अनुसार मैं जितना भी कुकर्म कर रहा हूं अपने जीवन में, मैं तो केवल एक यंत्र हूं, आप यंत्री हो। मैं तो निमित्त मात्र हूं और आप मुझे ये कुकर्म करवा रहे हो, तो मुझे दोषी मत ठहराओ कि मैं कुपेड़ी हूं, मेरे अंदर फितूर है। नहीं, मैं तो एकदम भोला भाला सा, मेरे अंदर कोई कुपेड़ नहीं है, कोई फितूर नहीं है, कोई चेष्टा अधर्म करने की चेष्टा नहीं है, ये आप मुझे कराते हो। तो दुर्योधन ने उस वार्तालाप में जो आज अर्जुन ने प्रश्न पूछा है, उसी प्रकार का एक सिद्धांत स्थापित किया कि मैं नहीं पाप करने के लिए प्रेरित होता हूं, मुझे आप प्रेरित करते हो। बलादिव नियोजित। तो दुर्योधन श्री कृष्ण पर दोषारोपण करने लगे। तो एक तरफ है अर्जुन जो नम्र जिज्ञासा कर रहे हैं, इसलिए भाषा से समझ में आ जाता है कि कौन कौन सी स्थिति में। एक बार एक राजा वो अपने मंत्री और सैनिक के साथ शिकार पर गया, तो जंगल में हुआ ऐसा कि संध्या के समय तीनों एक दूसरे से बिछड़ गए, अकेले अकेले पड़ गए तीनों। और उस जंगल में एक साधु महात्मा अपनी कुटिया में रहा करते थे, और वो साधु महात्मा वो दृष्टिहीन थे। तो अब देखिए, एक एक व्यक्ति इनकी कुटिया के आगे से गुजरता है और पूछता है दूसरे के विषय में, क्योंकि तीनों एक दूसरे से बिछड़ चुके हैं। कौन? राजा, सैनिक और मंत्री। तो सबसे पहले व्यक्ति आता है, वो देखता है साधु महात्मा, उसे समझ में आता है कि इनको दिखाई नहीं देता है, तो वो पूछता है, ए अंधे, घोड़ों को जाते हुए देखा? अब एक तो बोल रहा है अंधा, ऊपर से पूछता है देखते हुए देख जाते हुए देखा, तो उसने कहा नहीं, तो निकल गया। दूसरा व्यक्ति आया, उसने पूछा, हे सूरदास जी, क्योंकि अंधे व्यक्तियों को सूरदास भी कहते हैं, हे सूरदास जी, किसी को जाते हुए देखा? तो उन्होंने कहा कि हां देखा। कौन? मैंने कहा कि नहीं, अभी नहीं बताऊंगा। तो फिर तीसरे व्यक्ति, और वो आकर उन्होंने सबसे पहले दंडवत किया और चरण धूली ली, आशीर्वाद लिया, और फिर उनको इस प्रकार से एड्रेस किया कि हे साधु पुरुष, हे महात्मा, आपने यहां से किसी के जाने की आवाज सुनी? तब फिर ये साधु पुरुष कहते हैं, हां, सबसे पहले आपका सैनिक गुजरा, उसके बाद आपका मंत्री, और अब आप आए हो हे राजन। तो इसने कहा कि आपने कैसे पहचाना, आप तो देख नहीं सकते। उन्होंने कहा वाणी से, वाणी से पहचान लिया कि जो सबसे पहले गया वो इतना कल्चर्ड नहीं था, तो आपका सैनिक था, जिस प्रकार से उसने मुझे एड्रेस किया। दूसरा जो गया वो उतना बुरा नहीं था, लेकिन फिर भी, इसलिए वो आपका मंत्री रहा होगा, और आप जो इतने कल्चर्ड लैंग्वेज से मुझसे बात कर रहे हो, तो आप राजा ही होंगे। तो यहां पर वही एक प्रश्न अर्जुन भी भगवान से पूछ रहे हैं कि क्या भगवान वो शक्ति आप तो नहीं, जिसके वजह से कोई प्रेरित होता है अलग अलग कुकर्म करने में। और वही चीज दुर्योधन ने एकदम मुंहफट तरीके से, बिना किसी संस्कृति के, उसको बोल दी। तो ये अंतर है अर्जुन और दुर्योधन के शिष्टाचार में। तो अब दुर्योधन ने जो सिद्धांत प्रस्थापित किया, कौन सा सिद्धांत? यंत्र एवं यंत्री का सिद्धांत। और ये बहुत प्रचलित है भौतिक संसार में, आजकल ये सिद्धांत बहुत प्रचलित है। जैसे आप देखो, बहुत बार हम जब लोगों को किसी कार्यक्रम के लिए इनवाइट करते हैं, आइए जन्माष्टमी है, आइए गीता कोर्स है, गीता अमृत है, तो कई बार लोग बोलते हैं उनका बुलावा होगा तो आएंगे। अब उन्होंने बुलाया ही नहीं तो फिर मतलब वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मदन गोपाल जी ऑल्टर से उतरें, अपनी बांसुरी साइड में रखें, गाड़ी में बैठ के उनके घर जाएं और उनको एक इनविटेशन कार्ड दें कि गीतामृत के लिए आइए, मैंने ही सुनाई गीता, आइए। तो लोग कई बार बोलते हैं कि उनका बुलावा होगा तब आएंगे। एक बार एक व्यक्ति ऐसे ही बोल रहे थे, मैंने कहा कि आप रोज ऑफिस ऐसे ही जाते हैं? बॉस जब फोन करेंगे तो जाएंगे, नहीं फोन करेंगे तो घर पे ही रहेंगे। कोई अगर इस प्रकार से ऑफिस के लिए जाना न जाना शुरू कर दे तो बॉस फोन करके बैठे रहे भाई घर पे ही, मिल गया हमको दूसरा मिल गया। तो हम बाकी कामों के लिए कितना खुद प्रयास करते हैं, पैसे कमाने के लिए, इंद्रिय भोग करने के लिए, उसके लिए रुकते नहीं कि भगवान जब देंगे तब करेंगे। हाँ, इंद्रिय भोग के लिए ये प्रश्न नहीं होता, जब भगवान देंगे तब खाएंगे, नहीं गधे की तरह मेहनत कर रहे हैं, ये खरीदो वो खरीदो ये पैसे कमाओ। तो अब होता क्या है कि एक ये सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत ये है कि जब वो गलत करते हैं कुछ, तो गलत करते हैं तब सीधा कि मैंने नहीं किया है, करवाया गया, अरे मैं तो कठपुतली हूं, यही उदाहरण यूज करते हैं, सब शास्त्र के उदाहरण यूज करते हैं, मैं तो निमित्त मात्र हूं, जैसे दुर्योधन ने कहा मैं तो निमित्त हूं, मैं तो कठपुतली हूं, मैं तो यंत्र हूं। जैसे कि मान लो कि किसी ने खून किया और जज के सामने उसकी कार्यवाही चल रही है, तो जज सब तहकीकात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं उसको, तो वो कहता है मैंने नहीं किया खून, चाकू ने किया। ये सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है दुर्योधन का, कि वो कैदी जज से कहता है, वो खूनी जज से कहता है कि मैंने खून नहीं किया, इस बंदूक ने किया, ये बंदूक को सजा दो, आजीवन कारावास, मुझे नहीं, मेरी गलती नहीं। या फिर कोई किसी को थप्पड़ मारता है, बोलता है मैंने थोड़ी मारा, हाथ नहीं मारा, मैंने गीता कोर्स में सुना है मैं हाथ नहीं हूं। आई एम नॉट माई हैंड, आई एम नॉट माई बॉडी, सो आई एम नॉट स्लैप्ड यू, हरे कृष्णा, यू आर इन इग्नोरेंस, जी गीता कोर्स अटेंड करो तब समझ में आएगा। तो उसका जवाब उसको क्या मिलेगा, वो भी एक थप्पड़ मारेगा, मैंने भी नहीं मारा ले। तो बहुत ये एक ट्रिकी सिद्धांत है लोगों का, ये ट्रैप में डालने वाला है कि मैं नहीं, यंत्र और यंत्री का जो सिद्धांत है। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे एक उदाहरण से। Accusing Lord Krishna for all the sins which people are doing is like accusing sun. ये उदाहरण मैंने क्यों इस्तेमाल किया है, क्योंकि कृष्ण सूर्य सम होए माया अंधकार, चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक है, भगवान कृष्ण की तुलना सूर्य से की गई। तो अब ये प्रश्न पूछा जाए, इज द सन रिस्पॉन्सिबल फॉर वंस शैडो, क्या जवाब है आपका, एक साइंटिफिक उत्तर दीजिए या लॉजिकल उत्तर दीजिए, क्या जवाब आपका होगा, इज द सन रिस्पॉन्सिबल फॉर वंस शैडो, जैसे यहां पे आप देख रहे हो, यस और नो, नो क्या चल रहा है? यस नो, यस नो। अच्छा, कितने कहते हैं कि सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शैडो? वाई 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 सन इज रिस्पॉन्सिबल? संकीर्तन रस प्रभु, विदाउट सन देर विल नॉट बी अ शैडो। अच्छा, अब दूसरा प्रश्न, कितने इस मत में हैं कि सन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वन शैडो? हाँ बोलिए, आप बोलिए। हाँ, हैंड इज कमिंग इन बिटवीन। देखिए, दोनों जवाब उनके अंदर कुछ हद तक सच्चाई है। हाँ, कुछ हद तक उसके अंदर सच्चाई है कि हाथ भी अगर आपका है, यदि सूर्य नहीं है तो कितना भी हाथ घुमा लो अंधेरे में, हाँ, घुप अंधेरे में कितना भी हाथ घुमा लो, कोई आपको उसकी परछाई नहीं दिखेगी। तो ये भी कहना सच होगा कि सूर्य के वजह से वो परछाई दिख रही है, और ये कहना कि नहीं, मेरा हाथ बीच में आ रहा है इसलिए परछाई दिख रही है, इसमें भी सच्चाई है। तो कैसे समझें इसको, और जो वो सिद्धांत यंत्र और यंत्री का जो दुर्योधन ने प्रस्तापित किया उसको और इस उदाहरण के साथ कैसे उसको समझें? दुर्योधन क्या बोल रहा है, उसमें कहां पर हम इनको कैच कर सकते हैं जो ऐसे सिद्धांत बोलते हैं? दुर्योधन के अनुसार या दुर्योधन के पार्टियों के अनुसार वो बोलते हैं कि भगवान, आपके अंदर पाप है, ये कहना कि जो शैडो क्या है, अंधकार है ना, ये कहना कि सूर्य के अंदर अंधकार है, ये गलत है। कि सूर्य जो भी फैला रहा है वो क्या फैला रहा है? रोशनी। तो सूर्य, ये जो परछाई जिसके अंदर अंधकार दिख रहा है आपको, ये सूर्य से निकल नहीं रहा अंधकार, इसका मैनिफेस्टेशन हो रहा है जब सूर्य की रोशनी में कोई बाधा आती है। तो सूर्य से क्या निकल रहा है? केवल रोशनी, और सूर्य की रोशनी में बाधा आती है तब अंधकार दिखता है। तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण से क्या निकलता है? धर्म। और उस धर्म की जब ग्लानी होती है तब हमें दिखता है अधर्म या अंधकार। तो भगवान से अधर्म नहीं आ रहा, भगवान से रोशनी आ रही सूर्य की तरह। हम लोग बीच में खड़े हो जाते हैं, धर्म के बीच में खड़े हो जाते हैं, और फिर अंधकार पैदा करते हैं, और फिर कहते हैं कि देखो उसके वजह से, वो पीछे है ना, उसके वजह से देखो ये परछाई। तो बहुत ये ट्रिकी ट्रैप है ये, इसका, यंत्र और यंत्री का। अब इसमें ये समझना आवश्यक है कि ये पूरी सृष्टि भगवान के द्वारा रची, और हम भी और हमारी जितनी शक्तियां हैं वो सब कुछ, इसमें एक चीज है जो यंत्र और यंत्री और हम में और भगवान में विशेष फर्क है, और वो ये है कि यंत्र निर्जीव है। ये जो उदाहरण दुर्योधन ने दिया ना यंत्र का, तो यंत्र तो निर्जीव है, लेकिन हम निर्जीव नहीं है, हम जीवित हैं। तो यंत्र के विषय में बोल सकते हैं कि वो निर्जीव है, वो जड़ पदार्थ है, इसलिए उसको उठा के कोई, जैसे चाकू का उदाहरण दिया जाता है कि चाकू को आप सब्जी काटने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो और किसी के प्राण लेने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो चाकू, जब आप किसी के प्राण लेने जाओगे तो चाकू वो चिल्लाएगा नहीं, क्या कर, नहीं, चाकू नहीं चिल्ला, क्योंकि वो निर्जीव है। परंतु हम किसी अधर्मिक कार्य में लगने के लिए अगर कोई हमको प्रेरित करता है तो हम प्रश्न पूछ सकते हैं, क्यों? क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो स्वतंत्रता का रत्न भगवान ने दिया है, वो क्या है? फ्री विल, हम जीव हैं, जीवित हैं, जो कि प्रश्न पूछ सकते हैं धर्म और अधर्म के संदर्भ में। इसलिए दुर्योधन का ये जो सिद्धांत यंत्र और यंत्री का, ये फालतू सिद्धांत है, क्योंकि हम निर्जीव यंत्र नहीं है। समझ में आ रहा है? किसी का कोई क्लैरिफिकेशन इसके संदर्भ में? एनी क्वेश्चंस? तो इसको लेकर ये सिद्धांत का जो पालन करते हैं वो लोग भगवान के ऊपर दो दोषारोपण करते हैं, दो आरोप भगवान के ऊपर लगाते हैं। तो एक कैटेगरी होती है जो कहते हैं ही डजंट डू एनीथिंग, भगवान क्या किसी काम के नहीं, निकम्मे, निठल्ले, निकम्मे, किसी काम के नहीं है भगवान। और दूसरा दोषारोपण करते हैं वही सब कुछ करा रहे हैं। ये दो एक्सट्रीम है, एक तो बोलते हैं वो कुछ करते ही नहीं और दूसरा वही सब कुछ करा रहे हैं। मैंने आपको थप्पड़ मारा, मैंने आपको गले, मैंने नहीं दी। ये जीभ किसने दी? ये बोलने की शक्ति किसने दी? ऊपर वाले ने। तो मैं तो खाली टेप रिकॉर्डर हूं, कैसेट तो उनका है, ऐसा बोलते हैं। He is the only doer. तो इसमें होता क्या है? They make God as lazy God. जो पहली कैटेगरी है, that he is a lazy God. And if he is the only doer, then he becomes a cruel God. उत्तराखंड में बाढ़, खुद को तो बचा लिया, बाकियों को मार डाला, है ना? देखो सब जगह वो न्यूज में सनसनी खबर, केदारनाथ के भगवान शिव जी वैसे के वैसे रहे देखिए, और बाकी कैसे तड़प तड़प कर मरे। अब आप निर्णय कीजिए कि ये भगवान कृपालु हैं या निर्दयी। तो दे मेक हिम एज क्रूअल गॉड, कि वो सब कुछ करा रहे हैं। अच्छा, इतने सालों से जो लोग केदारनाथ बद्रीनाथ जा रहे हैं बिना फ्लड्स के, उनके बारे में कोई न्यूज नहीं कि वो कौन करा रहा था। अगर वही करता है तो इतने सालों से जो सबको इतना पुण्य मिला, जो उनके जीवन में सब कुछ इतना अच्छा हुआ, वो कौन करा रहा था? तो वही बात है कि जैसे ही हमारे जीवन में कुछ विपदा आती है तो तुरंत ये सिद्धांत सामने प्रस्थापित करते हैं। अच्छा, इसमें भगवान को तो लेजी और क्रूअल गॉड बना दिया, तो जो ये दो एक्सट्रीम सिद्धांतों का पालन करते हैं वो क्या बनते हैं? अब देखिए, इफ गॉड इज लेजी देन आई बिकम क्रूअल। समझ में आ रहा है ये? बिकॉज ही डजंट डू एनीथिंग सो ही इज लेजी, तो मेरे ऊपर सारा जिम्मा है पूरे संसार का, मैं करूंगा अभी। एंड इफ गॉड इज क्रूअल देन आई बिकम लेजी, वो ही कब सब करा रहे हैं तो मेरे को क्या करने का जरूरत है। जैसे ये कैटेगरी में प्रभुपाद एक कहानी सुनाया करते थे। एक बार एक व्यक्ति, वो अपने घर से बाहर निकला, वो नास्तिक था, घर से बाहर निकला, बीच रास्ते में आकाश की ओर देखते हुए चिल्ला रहा है, अगर भगवान ऊपर है तो मुझे अभी इसी वक्त आकर एक मुक्का मारे, एक घूसा मारे, अभी इसी वक्त आकर मुझे एक घूसा मारो, मैं मान लूंगा कि तुम हो। चिल्ला रहा है रास्ते पे, जोर जोर से चिल्ला रहा है। अचानक पीछे से एक ने उसके पीठ पे थपथपाया, पीछे मुड़ के देखा, एक मुक्का मारा इसने। बोला क्या भाई, तू क्या कर रहा है, तू क्यों मुक्का मारा? बोला भगवान बिजी है, मुझको भेजा है। और ये जो दूसरी कैटेगरी है, ये दूसरी कैटेगरी में ये ज्यादा डेंजरस लोग होते हैं कि कुछ नहीं करना है, बस वही सब कुछ करेंगे, वही हमारी नाव चलाएंगे। जैसे एक बार चार धर्म के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चारों को फांसी की सजा सुनाई गई एक शहर में। तो अभी चारों को लाइन से फांसी की सजा मिलने वाली है। तो अब वो फांसी की सजा, उससे पहले क्या था कि जो सूबेदार था, वो फांसी चढ़ाने वाला इन चारों को, तो सूबेदार था और एक व्यक्ति जिसके हाथ में वो फांसी का खटका था कि वो खटका छोड़ेगा या रिलीज करेगा और वो लटकेगा ऊपर ऐसे फांसी पे। तो सबसे पहले जो क्रिश्चियन था उसको लाइन में खड़ा किया गया और फिर वो सूबेदार ने पूछा, तो तुम्हारी अंतिम इच्छा बताओ। तो उसने भगवान, अपने भगवान को, जीसस क्राइस्ट को उसने प्रार्थना किया और फिर सूबेदार ने कहा खटके वाले को, खटका दबाओ। तो खटका दबाया, खटका गले तक आकर रुक गया। तो सूबेदार ने कहा ये इसके इष्ट देव ने इसको बचा लिया, इसको उतारो, लाइन से नीचे उतारो। फिर दूसरा मुसलमान, तो उसको लाइन पे खड़ा किया और फिर सूबेदार पूछता है तुम्हारी अंतिम इच्छा बताओ। तो उसने फिर अपने अल्लाह ताला को प्रार्थना की और एक मिनट प्रार्थना करने के बाद फिर खटका वाला जब खटका दबाया तो गले तक आकर रुक गया वापस फांसी का फंदा। अरे इसके भी इष्ट देव ने, अल्लाह ने बचा लिया इसको, चलो तुम भी लाइन से नीचे उतरो। अब हमारे हिंदू भाई, तो उसको बोला गया चलो तुम्हारी अंतिम इच्छा बताओ। उसने कहा एक मिनट में हमारे भाई 33 करोड़ देवता हैं, एक मिनट में किन किन को मनाऊंगा, और कोई एक छूट गया तो वही खटका दबा देगा। तो बेचारा परेशान हो गया, बोला कि इनके तो एक अल्लाह है, इनके एक यीशु मसीह है, जीसस क्राइस्ट है, हमारे तो 33 करोड़ हैं। तो ये सूबेदार कहता अरे देवों के देव महादेव, उनको उनको पुकारो। तो ओम नमः शिवाय कर कर महादेव जी को पुकारा, फिर खटके वाले ने खटका दबाया, गले तक आकर रुक गया, महादेव जी ने बचा लिया, चलो इसको भी लाइन से। फिर हमारे सिख भाई, उनको लाइन पे लगाया गया और फिर सूबेदार ने पूछा तो सरदार जी बताइए आपकी अंतिम इच्छा बताओ। तो उसने कहा साले बेवकूफ बनाता है, बेवकूफ बनाता है, मेरी अंतिम इच्छा बताओ, ये खटके को ठीक कराओ। बोला मेरी अंतिम इच्छा बताओ, ये खटके को ठीक कराओ और उन तीनों को लाइन में लगाओ। तो कई बार जो इस सिद्धांत के होते हैं उनको समझ में नहीं आता है कि वो खटके की कृपा है कि भगवान की कृपा है। तो इसलिए ये जो दो एक्सट्रीम हैं, मेकिंग गॉड एज लेजी गॉड, मेकिंग गॉड एज क्रूअल गॉड, दे बोथ आर नॉट द राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड। अच्छा, ये जो बहुत प्रसिद्ध है, ये एक दृष्टिकोण से दिखने में बहुत मासूम दिखता है ये, इसलिए हमने क्या कहा है तथा कथित गीता सार। ये गीता का सार नहीं है। यदि आप लोगों को ये सूचना किसी ने अब तक नहीं दी होगी तो हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि ये गीता का सार नहीं है, किसी का होगा, जिस किसी ने भी लिखा होगा उसका होगा, लेकिन गीता का नहीं है। क्योंकि बहुत लोग इसके झांसे में आकर वो लोग क्या बन रहे हैं, जैसे दुर्योधन, यंत्र और यंत्री का सिद्धांत, कि जो हुआ अच्छा हुआ, मतलब इतने लोग मरे उत्तराखंड में, अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, मैं जो कुकर्म में लगा हुआ हूं अच्छा हो रहा है, और आगे चलकर जो होगा वो भी अच्छा होगा। अब देखिए, भगवान अर्जुन को ये सिद्धांत नहीं बता रहे कि अर्जुन तुम्हारे साथ जो भी हुआ अच्छा हुआ। कोई भी श्लोक है गीता में जहां भगवान अर्जुन को यह बोल रहे हैं कि द्रौपदी का वस्त्र हरण अच्छा हुआ अर्जुन, और अभी जो हो रहा है तुम गांडीव फेंक दियो, ये भी बहुत अच्छा हो रहा है, और आगे चलकर हम इसी रथ पर बैठकर अपना डब्बा खाएंगे, वो भी अच्छा हो रहा है। नहीं, तो यहां हमें समझना है। और बाकी ये सब कुछ की तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, नहीं, भगवान ने कहा कि तुम्हारा हस्तिनापुर राज्य गया है, और अर्जुन रो रहे थे कि मुझे हस्तिनापुर राज्य मिल रहा है, और भगवान कह रहे थे कि तुम रो मत, लड़ो उसके लिए, लेकिन उसके लिए नहीं, धर्म के लिए। तो ये सब बाकी जो कि तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया, तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, हाँ, जो आज तुम्हारी बीवी है कल किसी और की थी, और तुम्हारे बाद इसलिए ये गीता का सार नहीं है। मैं इसलिए ये आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं क्योंकि इसके द्वारा लोग इसको गलत लेकर अपने जीवन में कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, इससे लोग गलत फायदा क्या उठा रहे हैं, ये जो भी किसी ने भी बनाया होगा उसका गलत फायदा क्या उठा रहे हैं कि मैं जिम्मेदार नहीं हूं, क्योंकि जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है मेरे साथ तुम्हारे साथ, मैंने चाहे तुमको थप्पड़ मारा, तुमको धोखा दिया, तुम्हारे साथ अच्छा हुआ, मेरे साथ अच्छा, क्यों, क्योंकि ये कहा, और आगे भी जो होगा, पहले भी जो हुआ है, अरे मैंने अगर तुमको धोखा दिया तो तुमने थोड़ी लाया था वो, हाँ, क्या लाए थे तुम, क्या ले जाओगे, सब यहीं से लिया, यहीं पे छोड़ जाओगे। तो इसमें कुछ हद तक सच्चाई है, इसमें यह बताया जा रहा है कि कैसे सब वस्तु जो हैं और स्थितियां जो हैं वो अशाश्वत है, हाँ, इसकी इतनी सच्चाई है इसके अंदर, लेकिन उसके पीछे जो धारणा लोगों के अंदर पैदा हो रही वो क्या है कि मुझे फिर जिम्मेदार होना आवश्यक नहीं है, आई डोंट हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एक्शंस, दिस इज द मोस्ट डेंजरस मेंटेलिटी विच पीपल आर हैविंग आफ्टर रीडिंग दिस, वो सबसे खतरनाक है कि मुझे मेरे कर्मों का उत्तरदायित्व लेने की आवश्यकता नहीं है। ये समझ लीजिए, अगर कोई वैसा बन रहा है तो ये गीता का सार नहीं, क्योंकि पूरे गीता का सार क्या है, अर्जुन जिम्मेदारी नहीं ले रहे थे, और गीता का वास्तविक सार है कि भगवान ने अर्जुन को जिम्मेदार बनाया और अर्जुन के द्वारा हम सबको, इसलिए ये तथा कथित है। अब अर्जुन ने भगवान को वार्ष्णेय इस शब्द से संबोधित किया है, तो ऐसा व्यक्ति जिसने वृष्णि नाम के राजा के वंश में जन्म लिया, तो भगवान वृष्णिवंशी कहलाते हैं। तो ये वृष्णि नाम के एक राजा हुए, और ये इतने प्रसिद्ध राजा कि इन्होंने अपने जीवन में एक भी पाप नहीं किया, निष्पाप ये राजा वृष्णि नामक राजा निष्पाप रहे अपने पूरे जीवन। और इनके विषय में बताया जाता है कि यदि इनके हाथों से कोई पाप भी हो जाता तो वो भी धर्म में परिवर्तित हो जाता, क्योंकि इनके अंदर पाप करने की वृत्ति नहीं थी, इतने निष्पाप ये थे। तो अर्जुन ने इसलिए भगवान को कहा कि भगवान आप तो वार्ष्णेय हो, आप ऐसे वंश के हो कि जिसके अंदर ऐसे वृष्णि नामक राजा हुए जो कि संपूर्ण रूप से निष्पाप थे, परंतु हम उस वंश के नहीं है। हमारे वंश में देखो ये खड़े हैं सामने। तो इसलिए अर्जुन यहां पर ये बता रहे हैं हम सबको कि हम सब जो जीव हैं, हम सब किसी दूसरी शक्ति के द्वारा पाप करने के लिए प्रेरित होते हैं, परंतु वार्ष्णेय नहीं। तो ये अर्जुन बताने का उनका उद्देश्य था, या भगवान को वार्ष्णेय नाम से पुकारने का उद्देश्य था। अच्छा, अर्जुन ने आज के श्लोक में पापम चरति पुरुष, पुरुष शब्द का इस्तेमाल किया। तो ये जो पुरुष, संस्कृत में इसका एक और अर्थ है हम मनुष्य, हम मनुष्यों के विषय में अर्जुन कह रहे हैं। इसलिए अर्जुन ने जीव शब्द इस्तेमाल नहीं किया, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए अर्जुन बहुत सोच समझ के पुरुष शब्द इस्तेमाल किए हैं, ये नहीं कहा पापम चरति जीवित, नहीं, उन्होंने कहा पुरुष। क्यों पुरुष? क्योंकि मनुष्य ही पाप और पुण्य में अटकते हैं, बाकी प्राणी, उनका कोई पाप नहीं, उनका कोई पुण्य नहीं। एक शेर चाहे कितने भी हिरणों को बकरियों को काट कर खाए, उसको कोई पाप नहीं लगता। और मनुष्य ठीक विपरीत, हर एक उसके कर्म में उसका अकाउंटिंग होता रहता है, ये उसके पाप के अकाउंट में, ये पुण्य के अकाउंट में, ऐसे। और यहां तक कि आत्मा को अन्य योनियों में डालने का जिम्मेदार मनुष्य है। देखिए कि आत्मा जो कि अब इस अपेक्षा में है कि यहां से मैं भगवत धाम जाऊंगा, तो मनुष्य के संपर्क में आने के वजह से उसे फिर से फेंका जाता है बाकी की योनियों में, और फिर उसको वहां पर भ्रमण करते 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 करते, तो जो भी बाकी की योनियों में वो इतने दंड भुगतता है। अब देखिए कैसी कैसी योनियां हैं भेड़ंगी, जहां पर आत्मा को रहना पड़ता है, वो किसके वजह से? क्योंकि वही आत्मा जब किसी मनुष्य शरीर में गया था तो उसने कुकर्म किए, उसके वजह से आत्मा को अब ये कारावास मिला हुआ है किसी शरीर का, प्राणी के शरीर का, कि छिपकली बन गया, बस चिपका हुआ है दीवाल से, दिन बीत रहे हैं, महीने बीत रहे हैं, बस कीड़े खा रहा है, चिपका हुआ। शुद्ध भगवान का पार्षद आत्मा छिपकली बने हुए चिपका हुआ, कॉकरोच बन गया, कोई ये कोई सुअर, ये यहां वहां घूम रहा है। क्यों? क्योंकि मनुष्य इसमें कुकर्म उसने किया था। एक बार एक व्यक्ति जंगल में, एक मनुष्य जंगल में शिकार करने गया, उसके पीछे एक शेर लग गया, तो भागते हुए पेड़ पर चढ़ गया और उस पेड़ पर एक बंदर बैठा हुआ था। तो बंदर ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम मेरी शरण में आए हो, ये पेड़ मेरा है, ये शेर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तो शेर नीचे, अब शेर पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा था, तो शेर नीचे प्रतीक्षा में, ये कभी तो उतरेगा नीचे, अरे भाई ये मनुष्य है, ये थोड़ी कोई बंदर की तरह एक पेड़ से दूसरे पेड़ में कूद पाएगा, ये तो उतरेगा ना, ठीक है थोड़ा लंच लेट होगा। तो शेर नीचे प्रतीक्षा कर रहा है, बहुत समय बीता, तो शेर ने उस बंदर से कहा कि देखो भाई हम दोनों एक ही जंगल के हैं, ये बाहर का आदमी है, और ये आदमियों पे विश्वास मत करना, तुम ऐसा करो कि तुम इसको धक्का मार दो और फिर मैं अपना लंच ले लूंगा, तुमको तो पेड़ पे मिलता रहता है तुम्हारा भाई, हाँ आपस में भाईचारा ऐसा होना चाहिए, तुम मदद करो भाई, मैं तुम्हारे ही इस राज्य का नागरिक हूं, तो बंदर ने कहा नहीं, मैं गद्दारी नहीं कर सकता, मैं धोखेबाजी नहीं कर सकता। तो शेर भी बंदर की ओर देखता हूं, अच्छा ऐसे ईमानदार बंदर भी होते हैं। फिर बाद में बंदर सो गया तो फिर मनुष्य को वो शेर बोलता है। शेर जानता था कि ये कर सकता है गद्दारी, क्यों? क्योंकि मनुष्य। तो फिर मनुष्य को कहता है कि देख भाई, मुझे भूख लगी है और मैं बिना खाए जाने नहीं वाला, तो तू कब तक ऊपर लटका रहेगा? तू इसको धक्का मार दे, सो रहा है, इसको मैं खा लूंगा, मैं चला जाऊंगा, तू नीचे उतर के अपने घर चला जाना, तू अपना रोटी सब्जी खा लेना। तो मनुष्य, अब मनुष्य का दिमाग देखिए, हर समय उसमें ऐसे कुपेड़ चलता रहता है उसके अंदर। तो उसने सोचा कि हाँ ये अच्छा प्रस्ताव रखा है, तो वो धक्का मारता है। किसको? बंदर को धक्का मारता है। अब बंदर जो इतना निपुण है पेड़ से छलांग मारने में, तो बंदर ने तुरंत नीचे वाली डाली पकड़ ली और अपने आप को बचा लिया उसने, वो नहीं गिर पाया। तो शेर बोलता है देख बंदर, मैंने बोला था ना ये गद्दार निकला। तो अब ये डर गया, आदमी डर गया। तो अब जो बंदर वाक्य कहता है वो सुनने लायक है। बंदर कहता है इस मनुष्य से कि नहीं, तूने मेरे साथ गद्दारी की, मैंने तेरे को यहां पर शरण दी, तेरी सहायता की, परंतु उसके बावजूद तूने गद्दारी की, मैं तुझे धक्का नहीं मारूंगा, मैं फिर भी तुझे यहां पर शरण दूंगा एक शर्त पर। जब तू यहां से बच के जाएगा ना, तो अपने बच्चों को और पूरे मनुष्य समाज को जाकर बोलना कि आगे से कभी वो न सिखाए कि मनुष्य वो बंदरों के वंशज थे। आगे कभी मत सिखाना, ये कलंक हो तुम लोग। तो ये बात सच है कि जितने पर्यावरण में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो हमारे वजह से आ रहे हैं। बेचारे जो प्राणी भी इतने प्रदूषण में अपना जीवन जी रहे हैं, वो प्रदूषण हमने पैदा किया उनके लिए, हम ही उनको परेशान कर 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 उनका जीवन ऐसा बना दिया है हमने कि वो बेचारे परेशान हैं कि हम लोग जो इतना प्राकृतिक जीवन जिया करते थे, ये अचानक हमारे जल में वायु में इतना प्रदूषण कहां से आ रहा है? एक बार कुत्ते एक साथ आ गए और कुत्तों का कॉन्फ्रेंस हुआ, बहुत सीरियस डिस्कशन चल रहा था। कुत्ते बोल रहे थे कि पता नहीं आजकल मनुष्य ये हमारे ऊपर इतने हावी क्यों हैं, हमने क्या बिगाड़ा इनका? तो एक ने कहा कि क्या हुआ बताओ, कुछ उदाहरण दो। तो एक कुत्ते ने कहा उस दिन मैंने दो मनुष्यों को झगड़ा करते हुए सुना, तो एक ने दूसरे को कहा कुत्ते तेरा सर फोड़ दूंगा। तो मैं वही पूछ रहा था कि मैंने क्या किया भाई, तुम दोनों का झगड़ा चल रहा है, मेरा सर क्यों फोड़ रहे हो? तो दूसरा कहता है अरे मैंने भी सुना उस दिन, एक ने बोला दूसरे को तेरे को कुत्ते की मौत मारूंगा। तो मेरा प्रश्न हम सब कुत्ते भाइयों से ये है कि आप लोग बताइए कि ये हमारी कौन सी मौत है, हमें पता नहीं। तो देखिए मनुष्य जब गाली भी देता है तो कुत्ते की औलाद, सुअर की औलाद ऐसे बोलता है, और फिर कुकर्म कर कर खुद ही बनता है किसी कुत्ते की औलाद। और स्वर्ग में जो देवता हैं, स्वर्ग के देवता, वो जब आपस में एक दूसरे को गाली देते हैं तो कैसे गाली देते हैं? हे मनुष्य। तो उनकी गाली इस प्रकार से होती, हे इंसान। तो यहां पर आत्मा को अन्य योनि में डालने का जिम्मेदार कौन है? मनुष्य। तो जो 84 लाख योनियां हैं, अन्य प्राणी हम जानते हैं कितने, 80 लाख। और सोचिए 80 लाख में भ्रमण करने के लिए जो पूरा कुकर्म का स्टॉक, वो 4 लाख मनुष्य के हाथ में, देखो कितने पावरफुल हैं कि 80 लाख में वो आत्मा को भ्रमण करने के लिए। और वो 80 लाख में, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, हमारे तुकाराम महाराज भी कहते हैं कि एक एक योनि में जितने कैटेगरीज हैं उस सब में उसको घूमना पड़ता है आत्मा को, कि एक बार यदि आत्मा मनुष्य शरीर से नीचे गिर गया किसी प्राणी की योनि में, तो यदि कुत्ता बना है या पेड़ बना है या मछली, जो भी, हर एक प्रकार की मछली उसको बनना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक प्रकार की मछली बनकर फिर कोई ऊंची योनि उसको मिलेगी, नहीं, हर एक प्रकार की मछली, हर एक प्रकार का पेड़, हर एक प्रकार का कुत्ता, सब कुछ बनने के बाद, फिर इतना भ्रमण करने के बाद, तो सोचो कि मनुष्यों में कुकर्म करने की शक्ति कितनी है कि आत्मा को इतना भ्रमण करा देता है वो। तो यहां पर इससे ये समझ में आ रहा है कि अर्जुन ने पुरुष शब्द इस्तेमाल क्यों किया, कि बाकी प्राणी वो मासूम है, ये जो सबसे बड़ा कुपेड किसके अंदर है, मनुष्यों के अंदर, पुरुष। इसलिए तो अब हमने जो भगवान द्वारा कहे गए पिछले से पिछले श्लोक को लिया, उसके अंदर भगवान ने क्या कहा था, राग द्वेष विमुक्तस्तु, कि राग और द्वेष, तो पाप जब कोई व्यक्ति करता है तो पाप के पीछे भी जो दो कारण हैं वो क्या हैं, राग और द्वेष। तो लोभ के कारण कि मुझे ये अच्छा लगता है इसलिए मैं इसको प्राप्त करने के लिए, यदि पाप भी मुझे करना पड़े तो मैं पाप भी करूंगा, और ये मुझे अच्छा नहीं लगता उसे कहते हैं द्वेष, तो मैं क्रोध के कारण पाप करूंगा। तो व्यक्ति लोभ के कारण पाप करता है और क्रोध के कारण पाप करता है। और राग और द्वेष, ये जो पिछले श्लोकों में हमने सीखा भगवान से, तो वो मूल कारण यहां पर बन रहे हैं, अटैचमेंट एंड एवर्जन, लव एंड हेट। अब आज के श्लोक से एक बहुत सूक्ष्म मुद्दा हम निकालेंगे कि यहां पर अर्जुन भगवान के सामने जो कह रहे हैं बलादिव नियोजित और अनिच्छन, कि बलपूर्वक और बिना इच्छा के, तो इसे क्या समझ में आता है कि पाप की दो लक्षण दिखाई देते हैं पाप करने के पश्चात। तो पहला लक्षण जो अर्जुन आज के श्लोक में प्रस्तुत कर रहे हैं वो क्या है, ग्लानी, गिल्ट, पाप किया किसी ने उसके पश्चात उसे ग्लानी हुई। और दूसरा लक्षण, कोई ग्लानी नहीं, बेशर्म, ये दूसरी कैटेगरी कि पाप किया है बेशर्म। तो इससे क्या समझ में आता है कि जब पाप करने के पश्चात मनुष्य के अंदर ग्लानी हो, पश्चाताप हो, गिल्ट या गिल्टी फीलिंग, तो समझ में आना चाहिए कि उसकी संस्कृति शुरू हुई है। हम देखेंगे कैसे। और जिसके अंदर कोई शर्म नहीं, कोई उसके अंदर ग्लानी नहीं, तो समझना चाहिए कि वो विकृति में स्थित है। तो यहां पर अर्जुन ये बलादिव और अनिच्छन से समझा रहे हैं कि संस्कृति क्या है और विकृति क्या है। तो यदि हम शेमलेसनेस लें तो उसमें प्रवृत्ति क्या होती है उस पापी की, आई डू व्हाट आई लाइक टू डू, मुझे जो अच्छा लग, मुझे मांस खाना अच्छा लगता है तो मुझे कोई परवाह नहीं कि मेरे जीव के लिए किसी के प्राण जाए, तड़प तड़प कर मरे, मेरे को कोई उसकी परवाह नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे मेरी जीभ के लिए मांस खाना अच्छा लगता है। तो शेमलेस, उसका उसकी ये प्रवृत्ति होती है, आई डू व्हाट आई लाइक टू डू। और दूसरा कोई अगर उसको डराए कि अरे भाई तुम्हारे को पाप लगता है, नर्क होगा, ये कोई नर्क, आई डोंट केयर। तो ये है शेमलेस कैटेगरी, आई डोंट केयर एंड आई डोंट बिलीव इन द कॉन्सिक्वेंसेस। तो क्या समझाएंगे ऐसे व्यक्ति को? लेकिन जो ग्लानि रखता है वो पाप करने के पश्चात उसको अंदर चुभता है, पाप हो जाता है उससे या जो भी कर लेता है वो पाप किसी भी वजह से, लेकिन अगर उसके अंदर ग्लानि है तो उसको अंदर चुभता है वो कि अरे पाप करने के बाद नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं करना चाहिए था मुझे, ऐसा गलत किया। क्यों? क्योंकि आई डू केयर एंड बिलीव इन कॉन्सिक्वेंसेस। तो उसके अंदर पश्चाताप सबसे पहले आया क्यों? क्योंकि उसके मन में एक बात आई कि मैंने जो गलत किया उसका परिणाम मुझे कोई मुझसे प्रगत व्यक्ति देगा, और वो कौन है? तो वो परमात्मा उसके हृदय में। उसको पश्चाताप हो रहा है कि जो मेरे अंदर, मैं जानता नहीं वो कौन है, परंतु कोई है जो साक्षी है, जो देख रहा है मुझे पाप करते हुए। तो इसलिए ग्लानि आ जाती। तो राधानाथ महाराज एक प्रवचन में बता रहे थे, गिल्ट इज द बिगिनिंग ऑफ परमात्मा रियलाइजेशन, कि गिल्ट आ गया, ग्लानि आ गई, मतलब मुझे ये साक्षात्कार शुरू हो गया है कि अंदर परमात्मा है। यदि मेरे अंदर ग्लानि नहीं है, मैं बेशर्म हूं, मतलब कोई मुझे देख नहीं रहा है, कोई मेरा लेखा जोखा नहीं लिख रहा है और मेरे को कुछ नहीं होने वाला है, मतलब कोई है ही नहीं, इसलिए मैं कर रहा हूं पाप। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आज के श्लोक में अर्जुन संस्कृति की शुरुआत कैसे होती है, ग्लानि के द्वारा। पूरा संसार यदि पापमय है, पूरे संसार में यदि पापी भरे हुए हैं, परंतु यदि कोई एक भी पाप करने के पश्चात यदि पश्चाताप करना प्रारंभ करता है, तो अर्जुन बोल रहे हैं संस्कृति चालू हो गई, देयर इज पोटेंशियल टू इंस्टॉल द कल्चर ओवर देयर। अब जो यहां पर अर्जुन ने कहा कि अनिच्छन अपि वार्षणीय, बिना इच्छा के जब पाप होता है, तो एक है बिना इच्छा के और एक है इच्छा पूर्वक। तो बिना इच्छा के अर्जुन बता रहे हैं वो संस्कृति है, और इच्छा पूर्वक जो पाप करता है पूरा प्लान करके, इच्छा करके, वो है विकृति। तो इसमें अर्जुन हमको एक आशा दे रहे हैं कि हां, यदि भौतिक संसार में बद्ध जीव, उससे यदि पाप भी हो जाए, परंतु यदि बिना इच्छा के वो पाप होए, तो वो अभी भी संस्कृति में स्थित है, क्योंकि बिना इच्छा के वो हो रहा है। लेकिन जो इच्छा पूर्वक कर रहे हैं वो तो नर्क के भागीदार होने ही हैं। अब बलाद इव नियोजिता, जो अर्जुन बोल रहे हैं कि बलपूर्वक पाप में लगना, एक है मेरी इच्छा नहीं और दूसरा है सामने से कोई बल। देखो बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है, मतलब यदि मेरी लड़ाई किसके साथ शुरू हो गई, मेरी इच्छा नहीं है कि मुझे उससे लड़ना है, लेकिन उसकी इच्छा है और उसके अंदर बल भी है, तो सोचो मेरी इच्छा नहीं, अगर मान लो मेरी इच्छा है लड़ने की, तो ठीक है मैं कुछ तो उसमें आनंद लूंगा कि मुझे लड़ने की इच्छा, मेरे को इच्छा ही नहीं लड़ने की, उसके अंदर बल भी है और उसके अंदर इच्छा भी, तो मेरी अनिच्छा, उसका बल और उसकी इच्छा, बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है इसका। तो अर्जुन बोल रहे हैं ये हो रहा है, जैसे बॉम्बे की लोकल ट्रेन, मेरी इच्छा नहीं उतरने की, मेरा स्टेशन नहीं आया, बलपूर्वक बलादिव नियोजित। उस समय बहुत से लोग ये श्लोक बोलते हैं, अथकेन प्रयुक्तो यम, दादर स्टेशन पुरुष अनिच्छन अपि वार्षणेय बला दिवन योजे, कि मुझे नहीं उतरना था, बलपूर्वक मुझे उतारा गया, तो वो है। तो यहां पर वो अर्जुन बोल रहे हैं। तो यदि हम लें अब वापस से पाप को जो अर्जुन बता रहे हैं, तो पाप के विषय में हमारे आचार्य बताए हैं कि ये दो पाप के गुण बताए गए या दुर्गुण बताए गए। बल, एक तो पाप के अंदर शक्ति है, बल है, और पाप के अंदर क्या है, वेग। तो क्या इससे समझ में आ रहा है कि एक तो पावर है और पावर के साथ साथ स्पीड है। देखो, पावर और स्पीड, एक और डेडली कॉम्बिनेशन है पाप का। तो यहां अर्जुन तो शक्ति के विषय में बोल रहे हैं और हम गति को लेंगे, स्पीड को लेंगे। जैसे कि यही जो उदाहरण आपने उत्तराखंड फ्लड्स में क्या हुआ था, इतने लोग कैसे बह गए, बड़ी बड़ी इमारतें बह गई, क्यों? क्योंकि पानी के अंदर वेग था। वही पानी जिसमें जाकर लोग नहाया करते थे, तो अब उस पानी के अंदर शक्ति कैसे आ गई, वेग के कारण। किसके कारण आई शक्ति? आई वेग, स्पीड के कारण। तो इसलिए पाप में कई बार आप देखो कि उसके अंदर हमको कहीं ले जाने की शक्ति होती है, जैसे कि वो वेगवान नदी, वेगवान नदी को आपको यहां से वहां बिना आपकी इच्छा के ले जाने की गति होती है या शक्ति होती है। वैसे पाप के अंदर तो कौन सी गति? दुर्गति। तो जैसे पुण्य के अंदर शक्ति है और पुण्य के अंदर वेग है, तो पुण्य के अंदर का वेग क्या है, वो आपको सदगति की ओर ले जाता है, और पाप के अंदर जो शक्ति और वेग है वो जीव को दुर्गति की ओर ले जाते हैं। तो उपदेशामृत में रूप गोस्वामी छह प्रकार के वेग बताए हैं। ये प्रसिद्ध श्लोक है, उपदेशामृत का पहला श्लोक है, जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि ये छह वेग हैं जिसके वजह से जीव पाप में लगता है। वाचो वेगम, मनसः क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्त वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीराम, सर्वाम अपिमान पृथ्वीम च शिष्यात्। तो ये छह प्रकार के वेग रूप गोस्वामी कहते हैं। अब इसमें देखिए, आप यदि ये छह वेग को लें, इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन है अर्ज, अर्ज टू स्पीक, अर्ज टू फॉलो द माइंड, अर्ज टू बिकम एंग्री, अर्ज टू ईट, अर्ज टू फिल द बेली, अर्ज टू सैटिस्फाई द जेनिटल्स। तो ये हैं। अब देखिए, लोग पाप करते हैं जिह्वा से, सबसे पहले वाचो वेगम, कि इतना वेग है इसके अंदर कि कई बार बड़े बड़े वर्ल्ड वॉर्स हुए हैं, केवल उन्होंने अपनी जिह्वा कंट्रोल नहीं की या वाचो वेगम कंट्रोल नहीं किया, कुछ बोल दिया। आप देखो कई बार किसी रास्ते में भी झगड़ा शुरू कैसे होता है, चुप रहे तो झगड़ा नहीं होगा, आगे बढ़ेगा नहीं, और कुछ भी गलतियां भी हुई है, उसके बदले अगर उस जिह्वा से उसने क्षमा मांग ली कि मेरे से गलती हो गई भैया, तो बात उधर ही, नहीं तू बीच में कैसे आया, मैं रिवर्स ले रहा था, तू बीच में कैसे आया। तो सबसे पहले तू बोलता है मेरे को, ये सिखाया तेरे मां बाप ने, मां बाप पे मत जाना, देखिए 5 मिनट के वार्तालाप में दोनों अपने अपने खानदानों का पूरा लिस्ट दे देते हैं, फिर वहां पे मारपीट, वो लोग दोनों एक दूसरे को मारना शुरू कर दिए, क्यों? क्योंकि चुप नहीं रह पाए, वाचो वेगम, एक दूसरे को मार रहे। अब कुछ हुआ नहीं होगा वहां पे, कुछ ज्यादा कुछ हुआ नहीं होगा, उसने कुछ उसकी गाड़ी को कुछ ठोका भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, खाली लेकिन बोला कैसे, तू कैसे बोला, माँ बाप के बारे में, खानदान के बारे में, फिर बीच में कोई रोकने जा, तू कैसे बीच में आया, तू क्यों ना कड़ा रहा, बोला अरे भलाई का जमाना नहीं, मैं तुमको मदद करने के लिए आया हूँ, तुम मेरे ऊपर चढ़ रहे, ये एक और घूसा लगा देता हूँ। फिर ऐसे ऐसे वर्ल्ड वॉर चालू होता है। तो यहां पर वाचो वेगम, कि हम मनुष्यों के अंदर ये जो जीभ अंदर है ना, हर समय लपलपाती रहती है अंदर, ये जीभ के वजह से हमारे इतने हम कुकर्म करते हैं बोलकर। फिर मनः वेगम, कि मन जो हमारा इतना अस्थिर रहता है, अनरेगुलेटेड, ये मन को कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है, कभी मन बहुत अच्छे मूड में है कि विश्वम पूर्ण सुखायते, और कभी मूड अच्छा नहीं है, तुम्हारी शक्ल भी मेरे को अच्छी नहीं लगती, क्यों, क्योंकि मेरा मूड ठीक नहीं, तुम्हारी शक्ल जैसी भी होगी अभी बदसूरत लग रही है। तो मन, खैर वो अपने आप में एक सेमिनार है, वो छोड़ दीजिए, हम सब जानते हैं क्या होता है। फिर मन के वो एक वेग है, मन का वेग, क्या क्या मांगता है मन। फिर क्रोध वेगम, फिर जब उसको कुछ मिला नहीं, संतुष्टि नहीं हुई मन की, तो क्रोध, फिर क्रोध के वजह से देखिए ऐसे ऐसे वेग लोगों के अंदर देखने को मिलते हैं, क्रोध आपा खो देते हैं ना, बोलते हैं ना कि अपना आपा खो देते हैं, और आपा खोने के बाद फिर सब कुछ खो देते हैं, तो ये क्रोध का वेग। फिर आगे रूप गोस्वामी कहते हैं कि जिह्वा एक और तरीके से वेग में डालती है, और वो है खाने। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि हमारी जिह्वा एक है लेकिन उसके कार्य दो, बाकी सारी इंद्रियां दो हैं, कार्य एक है, दो आंखें कार्य एक देखना, दो कान कार्य एक सुनना, दो ये नासिका कार्य एक सूंघना, लेकिन जिह्वा एक और इसके दो कार्य, या तो कुछ बाहर निकलता रहता है, जब उसमें थक गए निकालते निकालते तो अब अंदर डालो, तो इसलिए यह भी कहा गया है कि प्रकृति ने देखो हमें दो कान दिए हैं और एक जिह्वा दी, क्यों दिया, क्योंकि ज्यादा सुनो कम बोलो, एक जीव है दो कान है, दो कान से ज्यादा सुनो और एक जीव है चुप रखो उसको, इसलिए बहुत सी समस्याएं इस संसार में, बोलते हैं 50% से भी ज्यादा समस्याएं सुलझ जाएंगी हम मनुष्य समाज में यदि लोग चुप रहें, भक्ति में भी। तो जिह्वा वेगम, फिर उदर पापी पेट का सवाल, बोलते हैं ना शुरू ही होता है पापी पेट का सवाल, पेट की वजह से उसने वो जो सवाल कर रहा है, इतना बैठा बैठा सवाल करते रहता है सुबह से लेकर रात तक, क्या मुझे खिलाओगे, क्या अंदर डालोगे, भूख लग रही है, डालो, उठो, करो, काम करो, पैसा कमाओ, कुछ डालो अंदर, और फिर इतना सब हो गया उपस्थ वेगम, कि फिर मैथुन सुख, और उसके पीछे दुनिया भाग रही है, कितने अलग अलग प्रकार के कुकर्म चल रहे हैं, बीमारियां, एक दूसरे से इतनी शत्रुता, ये सब इन वेगों के वजह से। तो जो अर्जुन ने आज के श्लोक में बल शब्द का इस्तेमाल किया है, तो पाप के अंदर ये बल है और ये वेग, ये गति है। तो फिर अंत में अर्जुन, हम मानव जो समाज के लोग हैं उनके प्रति करुणा दिखाते हुए अर्जुन ने यह प्रश्न पूछा। कईयों को लगेगा अरे अर्जुन ये पाप पाप के विषय में पूछ रहे हैं, कुछ गड़बड़ तो करके नहीं आए। हाँ, अक्सर हमको ये लगता है ना कि जैसे जैसे मान लो कि कोई लेक्चर में भागवतम क्लास के बाद कोई प्रश्न पूछता है कि प्रभु जी अगर कोई गलती से पाप हो जाए मेरे हाथ से, तो सब लोग देखते हैं, अच्छा क्या 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 किया प्रभु जी, कुछ हुआ क्या, उनको बेचारा प्रश्न क्या उत्तर उसमें नहीं रुचि रहेगी, इसने कुछ तो किया होगा। तो ये हमारी प्रवृत्ति है, ये इसलिए ये मैंने लास्ट में पॉइंट रखा है कि ये जान लेना कि ये अर्जुन के अंदर कोई गड़बड़ी नहीं थी। अर्जुन के विषय में भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कहे हैं कि अर्जुन तुम अनघ, तुम निष्पाप हो। वही अर्जुन जब हम जानते हैं उर्वशी के सामने गए या उर्वशी अर्जुन के सामने आई, तो अर्जुन इतने आत्मसंयमी कि उर्वशी जैसी अप्सरा जिसके विषय में यदि कोई सपने में भी सोचता तो उसका पतन हो जाता, यहां सामने खड़ी है वो, और अर्जुन उसको हे माते कहकर पुकार रहा है। तो भगवान अर्जुन को ये ज्ञान दिए क्योंकि अर्जुन भगवान के सखा क्यों हुए, क्योंकि निष्पाप और उनके अंदर कोई द्वेष नहीं किसी के प्रति, कोई पाप करने की प्रवृत्ति नहीं। तो अर्जुन ये प्रश्न किनके लिए पूछ रहे हैं सोचिए, हम मनुष्य ये जो बद्ध जीव इस भौतिक संसार के जो पाप में प्रवृत्त हैं, उनके लिए अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहे हैं, इतना महत्वपूर्ण। तो हम यदि अर्जुन और अर्जुन के वंशज परीक्षित इन दोनों का चरित्र देखें, तो अर्जुन ने यहां पर इस श्लोक के द्वारा ये अपना चरित्र दिखाया कि कैसे अर्जुन निष्पाप परंतु फिर भी अर्जुन चिंता कर रहे हैं कि उन पापियों के विषय में जो बिना इच्छा के बल के द्वारा पाप में प्रेरित होते हैं। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा, पाप से पहले उनके विषय में, और श्रीमद् भागवत में पांचवें स्कंद में जब नरकों का वर्णन सुखदेव गोस्वामी ने किया परीक्षित महाराज को, तो परीक्षित महाराज छठे स्कंद के प्रारंभ में सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि वो जो इतने पापी नरक में अब यातना भुगत रहे हैं उनका उद्धार कैसे होगा ये मुझे बताइए। तो यहां परीक्षित जिनको अभी वो तक्षक डसने वाला है कुछ दिनों में, वो चिंता कर रहे हैं उन पापियों की जिनको वो जानते तक नहीं, एक तो जानते तक नहीं और दूसरे वो पापी, और परीक्षित महाराज उनके विषय में चिंता कर रहे हैं। तो परीक्षित महाराज ने भी अपना चरित्र दिखाया कि मैं अर्जुन का वंशज हूं, कि जो निष्पाप अर्जुन ने मानव समाज के उद्धार के लिए उनकी ओर से करुणा करते हुए जो प्रश्न पूछा था भगवान से, अथ केन प्रयुक्तोऽयम, तो वही परीक्षित पापियों के विषय में पाप करने के पश्चात जो यातना भुगत रहे हैं उनके विषय में अपनी करुणा दिखाते हुए कि उनका उद्धार कैसे होगा वो आप बताइए, अपना स्वयं का उद्धार उन्होंने नहीं पूछा। तो हम लोग सब यहां पर यदि कृपा पात्र बनना चाहते हैं, यदि कृपा पात्र बने हैं तो क्यों और कैसे, ऐसे जो पार्षद हैं भगवान के अर्जुन और परीक्षित श्रील प्रभुपाद, इनकी करुणा के वजह से हम यहां पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता श्रवण कर रहे हैं और हम पापों से बाहर निकलने की चेष्टा भी कर सकते हैं इनके वजह से। तो इसलिए आज जो अर्जुन का ये प्रश्न, ये इतना महत्वपूर्ण प्रश्न, और इससे हमें अर्जुन के प्रति अपनी कृतज्ञता दिखानी है कि अर्जुन ने ऐसे प्रश्न पूछे और ये प्रश्न के उत्तर जब अब भगवान देना प्रारंभ करेंगे तो सोचिए हमें डायरेक्टली भगवान की वाणी सुनने मिलेगी ऐसे महत्वपूर्ण हमारे प्रश्नों के उत्तर के संदर्भ में। बोलो श्री कृष्ण अर्जुन भगवान की जय। अब अगले श्लोक में भगवान उत्तर में कह रहे हैं, जो कि हम पता लगाएंगे कि जीव का महापापी वो शत्रु कौन है जो बलपूर्वक जीव के बिना इच्छा के उसको पाप में प्रेरित करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की श्रील प्रभुपाद की।
हरे कृष्णा कुछ सूचना।